लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे रोगियों की प्रेरिताई हेतु प्रार्थना करते हैं। हमारी याचना है कि रोगियों को अंतमलन देने वाला संस्कार उनके लिए, उनके परिवारों के प्रिय लोगों के लिए तथा सबके लिए ईश्वर की शक्ति, करुणा और आशा का एक दृश्यमान संकेत बन जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है वर्ष 2024 हेतु संत पापा फ्रांसिस का विश्व प्रेरितिक दिवस संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने 2 फरवरी 2024 को 98वां विश्व प्रेरिताई दिवस हेतु अपना संदेश प्रेषित किया, जो 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा, जिसकी विषय वस्तु जाओ और हर एक को विवाह भोज हेतु निमंत्रण दो है। संत पापा ने अपने संदेश में लिखा, 2024 विश्व प्रेरिताई दिवस का संदेश विवाह भोज के दृष्टांत पर आधारित है, जो संत मत्ती के सुसमाचार से लिया गया है। आमंत्रित अतिथियों द्वारा निमंत्रण को अस्वीकार किए जाने के उपरांत राजा, जो कहानी के मुख्य नायक हैं, अपने सेवकों से कहते हैं, चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में ले आओ। इस दृष्टांत के आधार पर यीशु के जीवन पर चिंतन करना हमें सुसमाचार प्रचार के कई मुख्य बिंदुओं पर आत्मपरख करने का निमंत्रण देता है। ये सारी चीजें हमारे लिए ठीक उस समय उभर कर आती हैं, जहां यीशु के प्रेरितिक शिष्यों की भांति हम धर्म सभा मार्ग के अंतिम पड़ाव पर आते और एकता, सहभागिता और प्रेरिताई पर विचार मंथन करते हैं, जो कलीसिया के मुख्य कार्य वर्तमान दुनिया में सुसमाचार का प्रचार है, पर पुनः हमारा ध्यान केंद्रित कराता है। अपने संदेश के प्रथम बिंदु जाओ और निमंत्रण दो के बारे में संत पापा कहते हैं कि यह हमें बिना थके बाहर जाने और ईश्वर के भोज में दूसरों को लेकर आने की बात कहती है। राजा के द्वारा अपने सेवकों को दिए गए आज्ञा में हम दो क्रियाओं को पाते हैं, बाहर जाओ और लेकर आओ। ये हमारे लिए प्रेरिताई के सार को व्यक्त करते हैं। संत पापा ने कहा कि हमें इस बात को याद करने की जरूरत है, जैसे कि पहली बार राजा अपने सेवकों को आमंत्रित अतिथियों को बुलाने के लिए भेजते हैं। यह प्रेरिताई के सार को व्यक्त करती है, जहां बिना थके सभी नर और नारियों के बीच हम बाहर जाते, जिससे हम उन्हें बुला सकें, जिससे उनका मिलन यीशु के संग हो और वे उनकी एकता में अपने जीवन को संचालित करें। ईश्वर बिना थके अपने महान प्रेम और करुणा की समृद्धि में निरंतर अपने लोगों से मिलते हैं। वे उन्हें अपने राज्य की खुशी में शामिल होने के लिए बुलाते हैं, यद्यपि उन्हें बहुत बार उनकी उदासीनता या प्रतिकार का सामना करना पड़ता है। यीशु ख्रिस्त एक भले चरवाहे और पिता के संदेश वाहक इसराइल की खोई हुई भेड़ों की खोज हेतु निकलते हैं, और वे उससे भी परे जाते हैं, जिससे वे सुदूर प्रांत तक पहुंच सकें। अपने पुनरुत्थान के पहले और बाद में वे अपने शिष्यों से कहते हैं, जाओ, और इस भांति वे उन्हें अपनी प्रेरिताई में शामिल करते हैं। कलीसिया अपनी निष्ठा में उन कार्यों को, जिसे यीशु ख्रिस्त ने उसे सौंपा है, पूरा करने हेतु पृथ्वी के सुदूर प्रांतों में जाती है। वह उन कार्यों को पूरा करने हेतु कठिनाइयों और बाधाओं की चिंता किए बिना, निराश हुए बिना आगे बढ़ती है। संत पापा कहते हैं कि इस संदर्भ में मैं उन सभी प्रेरिताई कार्य में संलग्न लोगों का, जो ईश्वरीय बुलाहट को सुनकर अपनी मातृभूमि से दूर सब कुछ छोड़कर सुसमाचार का प्रचार करते हुए उसे उनके बीच पहुंचाते हैं, जिन्होंने उसे अभी तक नहीं पाया है या अभी अभी पा रहे हैं, कृतज्ञता के भाव अर्पित करता हूँ। प्रिय मित्रों, आपकी उदारता आपकी निष्ठा की एक ठोस अभिव्यक्ति है जिसे यीशु ने अपने शिष्यों को सौंपा, दुनिया में जाकर सारे राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। हम प्रेरितिक बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हुए ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव अर्पित करते हैं, जहां हम सुसमाचार प्रचार के कार्यों को सीमांतों तक जाता हुआ पाते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हम इस बात को ना भूलें कि हर ख्रिस्तीय अपने में वैश्विक प्रेरिताई हेतु बुलाया गया है, जहां हम में से हर कोई अपने संदर्भ में सुसमाचार का साक्ष्य देने को कहा जाता है, जिससे सारी कलीसिया निरंतर हमारे ईश्वर और स्वामी के संग आज की दुनिया में आगे बढ़ती जाए। आज की कलीसिया में ईश्वर सदैव हमारे दरवाजों को खटखटाते हैं, जिससे हम अपना द्वार खोलते हुए उन्हें अपने अंदर आने दें। बहुत बार हम अपने में कैद हुई कलीसिया की भांति हो जाते जो ईश्वर को अपने अंदर आने नहीं देती है। वह उसे अपने तक सीमित रखना चाहती है, जबकि ईश्वर हमारे बीच में आए और वे हमारी प्रेरिताई की चाह रखते हैं। हम सभी जिन्होंने बपतिस्मा प्राप्त किया है, हम अपने से बाहर निकलने को तैयार रहें, चाहे हम अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हों। हम ख्रिस्तीयता के उजाले में एक प्रेरितिक कार्य की शुरुआत करें। संत पापा दृष्टांत की ओर लौटते हुए राजा के शब्दों के बारे में कहते हैं, जो अपने सेवकों को केवल जाने के लिए नहीं कहते बल्कि निमंत्रण देने को कहते हैं, विवाह भोज में शामिल होने आइए। हम यहाँ एक दूसरे विषय को, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, ईश्वर के द्वारा अपने लिए प्रेरितिक कार्य की जिम्मेदारी मिलता पाते हैं। जैसे हम यहाँ विचार कर सकते हैं कि सेवकों ने राजा के निमंत्रण को जरूरी घोषित करते हुए नम्रता और सम्मान में इसे लोगों के लिए घोषित किया। उसी भांति सुसमाचार का प्रचार हर जीव के लिए उसी शैली में होना चाहिए जो हमारे द्वारा घोषित किए जाते हैं। दुनिया के लिए ईश्वरीय प्रेम की सुंदरता की घोषणा, जिसे यीशु ख्रिस्त ने अपने क्रूस मरण और मृतकों में से पुनरुत्थान द्वारा किया, हर प्रेरितिक शिष्य को इसे खुशी से हृदय की विशालता और सबों की भलाई में करने को आमंत्रित करती है, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फलों की निशानी है। यह दबाव में किसी का धर्मांतरण करना नहीं, लेकिन निकटता, करुणा और कोमलता में लोगों से पेश आना है, जिसके द्वारा हम स्वयं ईश्वर के कार्य करने के तरीकों को प्रस्तुत करते हैं। संदेश के दूसरे बिंदु विवाह भोज के बारे में संत पापा फ्रांसिस ने कहा, यह हमारे लिए यीशु ख्रिस्त में अनंत जीवन को व्यक्त करता है, जो हमारे लिए कलीसियाई यूखारिस्तीय आयाम है। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार के दृष्टांत में हम राजा को अपने पुत्र के विवाह भोज का निमंत्रण देने की बात सुनते हैं। यह हमारे लिए ईश्वर के स्वर्गीय भोज को अभिव्यक्त करता है। यह उस अनंत ईश्वरीय राज्य को चित्रित करता है, जो हमारे लिए यीशु ख्रिस्त के आने में पूरी होती है, जो ईश्वर के पुत्र मसीह हैं, जिन्होंने हमें भरपूर जीवन दिया है, जो हमारे लिए रसदार स्वादिष्ट भोजन उत्तम अंगूरी के रूप में व्यक्त की गई है, जहां ईश्वर हमारे बीच से मृत्यु को हमेशा के लिए दूर करेंगे। श्रोताओं, ख्रिस्त की प्रेरिताई समय की पूर्णता को घोषित करती है, जैसे कि उन्होंने इसे अपनी प्रेरिताई के शुरू में कहा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है। ईश्वर और स्वामी के शिष्यों को उनके इस प्रेरिताई को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यहाँ हम द्वितीय वैटिकन महासभा के विचारों से अपने को रूबरू होता पाते हैं, जो हमें ईश्वरीय राज्य के बारे में कहती है। प्रेरितिक कार्य ईश्वर के प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन के बीच प्रसारित होती है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा आगमन के पूर्व हमें सुसमाचार को सारे राष्ट्रों में घोषित करने की जरूरत है। श्रोताओं, हमने आज के प्रसारण में संत पापा फ्रांसिस के 2024 विश्व प्रेरिताई दिवस के संदेश को सुना। हम आगामी बुधवार भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
गगन की छाओ में होना
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने रोमन बंदरगाह सुरक्षा रोम शहर की संरक्षिका पोर्टिको में माता मरियम की प्रतिष्ठित छवि की भक्ति के 1500वीं वर्षगांठ के अवसर पर ईश्वर की माता के पुरोहितों के धर्म समाज के जनरल फादर अंतोनियो पिक्कोलो को एक संदेश भेजा। अपने संदेश में संत पापा ने धर्म संगियों के साथ उनकी प्रार्थना में शामिल होने की खुशी व्यक्त की, जिन्हें 1601 में माता मरिया की छवि की देखभाल करने हेतु सौंपा गया। एक प्यारी और देखभाल करने वाली माँ, एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ जो अपने बच्चों को सुरक्षित आश्रय देती है। संत पापा ने धर्म समाज के प्रत्येक पुरोहितों और रोम की पूरी कलीसिया के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लेने वाले लोगों के प्रति सौहार्दपूर्ण विचार व्यक्त किया। संत पापा ने कहा, संयोग से आशा की जयंती की तैयारी का वर्ष 2024 विशेष अनुग्रह का समय है, क्योंकि वे स्वर्गीय माता के भक्त संत जोवानी लियोनार्दी द्वारा स्थापना के 450 वर्षों का भी स्मरण करते हैं। कैंपिटेली के पोर्टिको में माता मरिया की भक्ति की शुरुआत 17 जुलाई 524 को संत पापा जॉन प्रथम की उपस्थिति में एक रोमन संरक्षक संत गाल्ला के घर में ईश्वर की मां की दिव्य अभिव्यक्ति के बाद हुई। तब से पोर्टिको, जहां कुलीन गाल्ला ने गरीबों और तीर्थयात्रियों का स्वागत किया, एक मरियम तीर्थालय और धर्मशाला बन गया। संत पापा ने कहा कि यह संत लियोनार्दी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों, गरीबों और जरूरतमंद लोगों के स्वागत के मूल्य की देखभाल करने और उसे बढ़ावा देने हेतु एक निमंत्रण है, ताकि जिन स्थानों में हम रहते हैं और कलीसिया स्वयं दुनिया के लिए एक खुला पोर्टिको बन सके, जिसमें हमारे जीवन की विशेषता गरीबी के कई रूपों को सांत्वना और सहायता प्रदान की जा सके। संत लियोनार्दी ने धन्य कुंवारी मरियम की सुधारित पुरोहितों के धर्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कलीसिया को इसके मूल की प्रेरितिक चमक को बहाल करना था। उनका कहना था कि मसीह हर चीज के केंद्र में है, मसीह हर चीज का माप है। ईसा मसीह ही एकमात्र औषधि है जो कलीसिया और मनुष्य की बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। संत पापा ने पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला कि यह धर्म समाज जो अपने संस्थापक के उपदेश को स्वीकार करते हुए अधिक से अधिक मिशनरी उत्साह और आध्यात्मिक जीवन में निरंतर प्रगति के लिए प्रोत्साहित करता है। उधर थाईलैंड की कैथोलिक शिक्षा परिषद और लिकास ने बैंकॉक के मातर दे स्कूल में 12 से 14 जुलाई तक युवा सोशल हैकथॉन में थाईलैंड भर के 12 स्कूलों के छात्रों को एकत्रित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिनोडालिटी पर धर्म सभा के लेंस के माध्यम से दबावपूर्ण सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में युवाओं को शामिल करना था। लिकास के कार्यकारी निदेशक पीटर ने कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं के बीच धर्म सभा के बारे में जागरूकता और जुड़ाव बढ़ाना है। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी के लिए सिनोडालिटी का अभ्यास करने का अवसर है, विशेष रूप से वयस्कों के लिए यह दिखाने का कि हम वास्तव में इन युवाओं की बात सुन रहे हैं। 13 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रतिभागियों को एशिया में धर्म सभा के महाद्वीपीय चरण के दौरान पहचाने गए 9 प्रमुख मुद्दों में से एक से निपटने के लिए आमंत्रित किया गया था। हैकाथॉन कार्यशालाओं की एक श्रृंखला के साथ शुरू हुआ, जहां एक नेतृत्व कोच और एक आदिवासी समुदाय के नेता सहित विभिन्न क्षेत्रों के सलाहकारों ने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया। आयोजकों ने कहा कि हैकाथॉन ने न केवल छात्रों को सामाजिक मुद्दों में सार्थक योगदान देने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया, बल्कि व्यवहारिक तरीकों से सिनोडालिटी को भी लागू किया। उधर 200 केन्याई पुलिस अधिकारी अपने सहकर्मियों की उपस्थिति को दोगुना करने के लिए हैती पहुंचे हैं। कानून और व्यवस्था की इस दूसरी लहर का उद्देश्य संकटग्रस्त राष्ट्र में स्थिरता लाना है। हैती में अब 400 केन्याई पुलिस अधिकारी तैनात हैं, जो अपने अनुभव और विशेषज्ञता को इसके 9000 कानून और व्यवस्था अधिकारियों को दे रहे हैं, जो 11 मिलियन से ज्यादा लोगों वाले देश में फैले हुए हैं। उनके पहले आए पुलिस अधिकारियों की तरह उन्हें राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के आसपास तैनात किया जा रहा है, जिसका 80% हिस्सा अभी भी सड़क गिरोहों के कब्जे में है। इस मिशन में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और फ्रांस ने $600 मिलियन की वार्षिक सहायता देने का वादा किया है, लेकिन अपनी सेना में से किसी को भी देने से मना कर दिया है। उधर गाजा पर इसराइली हमलों का सिलसिला लगातार तीव्र होता जा रहा है, जिससे एक और नरसंहार हुआ। गाजा के नागरिक सुरक्षा रिपोर्ट में हाल के घंटों में गाजा पट्टी के केंद्र और दक्षिण में कई इसराइली हमलों के कारण 60 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस बीच इसराइल और लेबनान के बीच गोलाबारी तीव्र बनी हुई है। कल सीमा पार कई इसराइली हमलों में 5 लोग मारे गए, जिनमें 3 सीरियाई बच्चे भी शामिल हैं। इसके जवाब में लेबनानी हिजबुल्लाह की ओर से पिछले कुछ घंटों में उत्तरी इसराइल में करीब 15 रॉकेट दागे गए। फ्रांस ने हिंसा की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के लिए सम्मान का आग्रह किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने अपने मिस्र के समकक्ष अब्देल फतह अल सिसी, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थाली और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ बातचीत की और दोहराया कि युद्ध विराम का कार्यान्वयन कैसे संभव हो सकता है, अब देरी नहीं की जाएगी। विशेष रूप से इसराइल में 7 अक्टूबर को अभूतपूर्व हमले के बाद फिलिस्तीनी इस्लामी आंदोलन हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई प्राप्त करने और गाजा में आबादी की पीड़ा को समाप्त करने के लिए। कल शाम इसराइली सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पट्टी में संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने और बंधकों की रिहाई के उद्देश्य से वार्ता फिर से शुरू की है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।